आयत नंबर 132 जो है, इसको आप फिर इस पे गौर करें और इस लिहाज से इस पे गौर करना बहुत जरूरी है कि वस्वा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को उसी बात की वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों से यही कहा, और दोनों ने अपने अपने बेटों से क्या कहा, अपनी अपनी औलाद से क्या कहा, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मेरे बच्चों अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। अब आप देखिए कि मरते दम तक जो है वो मुस्लिम रहना, इसके क्या मानी है। इससे ये बात हमारे सामने आती है कि बहसियत मुसलमान के सारी जिंदगी जो है वो अल्लाह की बंदगी में गुजारी जाए, यहां तक के जो है वो मौत जो है वो आ जाए। और आप देखें कि मरते दम से मुराद क्या है कि पहले जो जिंदगी है वो भी अल्लाह की बंदगी में गुजर रही है और यहां तक के इसी हाल में जो है फिर मौत आ जाए। तो ये है असल बात जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे और यही बात जो थी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे। वह अंतुम मुस्लिमून कि तुम जो हो वो मुस्लिम रहो, मुस्लिम बनो, और इस्लाम जो है ये वो दीन है जो अल्लाह पसंद करता है। इस्लाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहते हैं कि बहसियत दीन के, बहसियत जिंदगी गुजारने के एक तरीके के, मैंने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। तो आप सोच लीजिए कि ये दीन जो है ये एक इमानत है आपके पास, मेरे पास एक भारी इमानत, और इस इमानत का हक जो है वो महद से लहद तक अदा करना है। और इस्लाम पर अमल करते हुए अगर बड़ी बड़ी आजमाइशें भी पेश आएं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह इन आजमाइशों का पूरे अज़्म और हिम्मत के साथ मुकाबला करना है। ख्याल रखना है कि शैतान किसी मरहले पे जो है अल्लाह की बंदगी से, अल्लाह की अताअत से हटाने में कामयाब ना हो जाए। इसी के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। अब आप देख लें कि आपने कुरान की क्लास जो है इसका आगाज किया है और पहला पारे का इख्तिताम है, और इसके साथ ही आप सब अपना अपना जायजा लें कि क्या जो है मुझे जो है लिखना मुश्किल लगता है, क्या मुझे सबक याद करना मुश्किल लगता है, या ये कि जब मैं क्लास में आती हूं तो मेरा दिल लगता है, या शैतान मुझे वसवसे जो है वो वसवसों में मुब्तला करता है, शैतान भरपूर वार करता है, इतनी मुश्किल में पढ़ने की क्या जरूरत है, या ये कि अब उम्र इतनी हो गई है अब तो याद नहीं कर सकते, या फिर ये कि लिख नहीं सकते, या फिर ये कि जॉब और घरदारी के साथ जो है इस क्लास को लेके चलना मेरे लिए मुश्किल है, और किसी को हो सकता है लफ्जी तर्जमा याद करना मुश्किल लग रहा हो, किसी को रूट वर्ड, और किसी को जो है वो बैठ कर इस पे सोचना, गौर करना, तदब्बर करना। याद रखें कि शैतान अव्वल तो नेक काम की तरफ आने ही नहीं देता, और अगर आप आ जाते हैं किसी ना किसी तरह तो फिर वो चाहता है कि इनको जो है इसमें इस्तकामत जो है ना वो ना रहने दी जाए, इस्तकामत जो है वो उस सिलसिले में रखने डालना शुरू करता है कि चलो नागा कर लो, छुट्टी कर लो, या ये कि जो है ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। तो आप सोच लें कि कुरान मजीद जिंदगी का सिलेबस, और अब तक की जिंदगी में अगर इसको नहीं पढ़ा तो फिर आखिर कब पढ़ेंगे। तो अगर हम इस वसीयत पर अमल करना चाहते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने की थी, तो इसके लिए क्या है कि कुरान मजीद से दोस्ती करनी होगी, इसको अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना होगा। और आप जो है एक बात जो है अपने जहन में बिठा लें कि मेरी कुरान की इस क्लास के साथ जो अल्लाह का कलाम पढ़ने में बैठी हूँ, मेरी स्ट्रांग कमिटमेंट होनी है। स्ट्रांग कमिटमेंट, ना छुट्टी है, ना नागा है, ना थकना है, ना हारना है, ना बददिल होना है, ना परेशान होना है, ना बोझल होना है, और अपनी मंजिल की तरफ, रब की रसा की तरफ जो है बस चलते ही चलते जाना है। और यहाँ पे यही बात है, फला तमू तुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। अम कुन तुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे। शुहदा का लफ्ज जो है ये शीन हा दाल से है, शहीद वाहिद है, शुहदा इसकी जमा है। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे, कब। इज हदरा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम को जो है वो मौत आई। हा द्वाद रा, इसके मानी होते हैं हाजिर होना, आना, कि जब आई याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत। इससे मुराद ये है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जब उनके मरने का वक्त था। और आप देखें कि दुनिया से जाना बिल्कुल आखिरी वक्त है, तो उस वक्त अगर कोई इंसान बात करता है तो कैसी बात करता है, जो बहुत ही अहम हो, जो बहुत ही अहमियत वाली बात हो। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं अपनी मौत के वक्त जो थे वो वसीयत कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटों को वसीयत के लिए बुलाया और उनसे पूछा, इज क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, जब उन्होंने कहा लिबनीही अपने बेटों से, ये असल में बनीन था, और आखिरी जो यहाँ पे नून है, नून या के बाद एक नून है जो गिर चुका है, आपको नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है, ये अरबी जबान का एक कायदा है कि बाज़ औक़ात जो है ये नून अराबी जो है वो गिर जाता है। तो ले बनी ही उन्होंने अपने बेटों से कहा, मा ताबुदूना मिन बादी, मा ताबुदूना, तुम किसकी इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद, क्या मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद, मेरी वफात के बाद, फिर तुम जो है किसकी इबादत करोगे। यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मौत की वसीयत का हवाला दिया, और वसीयत में अहम बात जो है वो ये कि उन्हें इस बात की फिक्र थी कि मेरी वफात के बाद मेरे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, किसकी इबादत करेंगे। जैसे आम तौर पे एक आम शख्स जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं मर गई या मैं मर गया, मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, क्या उनके पास घर होगा, क्या वो अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे, इनका क्या बनेगा। जैसे बाज लोग क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, मा ताकुलून मिन बादी, के मेरे बाद तुम क्या खाओगे, कैसे जियोगे। लेकिन ये पैगंबर थे और मरते वक्त जो उनको एक बात की फिक्र थी, और वो ये कि मेरे बच्चे मेरे बाद तौहीद पर कायम रह सकेंगे, वो एक अल्लाह की बंदगी करेंगे, क्या वो अल्लाह से डरने वाले रहेंगे, क्या वो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले। और याद रखें कि एक बाप अपनी जिंदगी में अगर अपनी औलाद को कोई बेहतरीन चीज दे सकता है, अगर कोई माँ जो है वो अपनी औलाद को कोई बेहतरीन चीज दे सकती है, तो वो क्या है कि तालीम और तरबियत, इस्लाम की नेमत, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में अपनी औलाद से ये वादा लेना कि जिंदगी में भी वो एक अल्लाह की बंदगी करेंगे, और फिर वालदैन के मरने के बाद भी उनकी ज्यादा से ज्यादा फिक्र जो है वो आखिरत की होगी, और ये कि वो दीन हक पर कायम रहें, दीन के लिए जिए और दीन के लिए मरे। फिर इस सिलसिले में आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि जो मुसलमान वसीयत करना चाहता है वो दो रातें भी ना गुजारे इल्ला ये कि इसके पास वसीयत लिखी हुई हो। तो वसीयत जो है ये ताकीदी हुक्म को कहते हैं, जैसे कोई बहुत ही ताकीद के साथ जो है ना किसी को कोई बात कहना। तो आप सोच लें कि अब यहाँ पे भी ये बात बताई जा रही है कि हर मुसलमान जो है उस पर दो रातें ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए, लेकिन उसकी वसीयत जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए। तो अब वसीयत जो है वो किन चीजों की लिखनी है, अब आपका भी एक होमवर्क है, और वो ये कि अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करनी है, अल्लाह के पास जाने के दिन को याद रखना है, और फिर क्या कि आप में से हर तालिबा जो है वो अपनी अपनी वसीयत लिखे। और वसीयत से मुराद ये कि मेरे बच्चों का, अपने बच्चों के बारे में दीन ईमान की जो फिक्र है, और उसके साथ जो है अगर आपके पास कुछ भी जो है वो माल है, दौलत है, सोना चांदी या जो कुछ भी मौजूद है आपके पास, तो उस सिलसिले में जो है वो वसीयत, और खास तौर पे वसीयत जो है वो 1/3 की हो सकती है, उससे ज्यादा की वसीयत जो है वो नहीं की जा सकती। और वसीयत के सिलसिले में ये बात भी याद रखने वाली है, जैसे अंबिया जो थे जब दुनिया से गए, तो जो उन्होंने चीज को अपनी नस्लों में ट्रांसफर किया। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कौन सी सबसे बड़ी नेमत विरासत में छोड़ी, आपने फरमाया ऐ लोगों मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ चला हूँ, अगर इसे मजबूत पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी मेरी सुन्नत। इसे मौता इमाम मालिक ने रवायत किया है। फिर इसी तरह हजरत लुकमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे को जो वसीयतें की, जो सूरत लुकमान में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें से उनमें क्या थी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिरका लजुल्मुन अजीम, या बुनैया अकीम सलात वामुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबक। आप देख लें कि ये क्या था, ये उनकी वसीयतें थी। तो वसीयत वो ताकीदी हुक्म है कि हमें अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद जो है वो क्या करेंगे, और उस हिस्से में उनसे बात भी करना और उनको जो है वो ताकीद भी करना। और यहाँ पे यही बात जो है याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी औलाद से पूछ रहे हैं, और उनकी औलाद क्या कहती है, कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक। इन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, नअबुदु हम इबादत करेंगे, इलाहका तेरे माबूद की, वह इलाह आबाई का और माबूद तेरे अबाउ अजदाद का, तेरे बुजुर्गों का जो रब था, एक इलाह जो माबूद था उसकी इबादत करेंगे और तेरे माबूद की। और बुजुर्ग कौन थे, अपने बाप से क्या कह रहे हैं कि आपके बुजुर्ग कौन थे, इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, तो इनका जो है वो जिक्र करते हैं। अब आप देख लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर जो है वो इनके बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और इलाहम वाहिदन एक खुदा की व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के मुस्लिम हैं। अब आप देख लीजिए कि एक अल्लाह की बंदगी और फिर ये कि सारी जिंदगी उसकी बंदगी जो है वो करते रहना। तो यहाँ पे पैगंबरों को हमारे सामने रखकर उनका किरदार जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब से, हम सब के सामने एक सवाल रख रहे हैं। सवाल ये कि हमारे जो अबाउ अजदाद थे वो इतने बड़े बड़े लोग थे और अब हम क्या कर रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं ना, बाज लोग कहते हैं कि पिदरम मां सुल्तान भूत के मेरा बाप जो था वो सुल्तान था, या बाज लोग कहते हैं कि हमारी तो लड़ी जो है हाफिजों की लड़ी है, हमारे बाप दादा जो थे वो बड़े नेक थे। लेकिन असल बात क्या है कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। तो आबाओ अजदाद से निस्बत रखने के लिए जरूरी है कि हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारा अकीदा जो है वो बेहतरीन अकीदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद रखने वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम बत्ता बिही अमलहू लम युसरे बिही नसबहू, जिसका अमल उसको पीछे छोड़ गया उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। होता है ना कि बाज लोग कहते हैं जी हम तो सिद्दीकी हैं, बाज कहते हैं हम तो सैयद हैं, बाज कहते हैं हम तो जो है वो अलवी हैं। तो हसब नसब ये जात पात अल्लाह ताला इसकी बिना पर किसी के दर्जे बुलंद नहीं करेगा। अगर किसी का दर्जा बुलंद होगा तो किस बात पर, कि वो शख्स जो है वो खुद कैसा है, उसका किरदार कैसा है। तो यहाँ पे भी यही बात है, फरमाया तिल का उम्मत उन कद खलत, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए। यहाँ पे उम्मत से मुराद अंबिया इकराम का जिक्र किया जा रहा है कि बड़े नेक थे, तौहीद परस्त थे, अल्लाह के आगे झुकने वाले थे। लहा माँ कसबत वला कुम माँ कसब तुम, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया। तो हर एक का अमल जो है वो उसके साथ है। ये वही बात है कि एक किसी इंसान के लिए वही कुछ है जो कि वो कमाई करता है। तो एक बंदे की कमाई जो है वो दूसरे बंदे को या दूसरे इंसान को जो है वो फायदा नहीं दे सकती। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे थे। अब आप देखें कि यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है बनी इसराइल, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम वो क्या करते रहे, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुम खुद क्या करते रहे। तो जो तुम कमाओगे, जो तुम्हारा फेल है, जो तुम्हारा अमल है, इखलाक है, किरदार है, उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। यहाँ पे कसब के बारे में ये बात याद रखिएगा, कुरान मजीद जो है अपनी जबान में हर इंसान के इखलाक, किरदार, अमल को कसब कहता है, कहता है कि ये उसकी कमाई है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक कर आपको भी गौर करना चाहिए, आप सबको भी ये सोचना चाहिए कि मेरा कसब क्या है, मेरे मेरे अमल क्या हैं, मेरे मामलात क्या हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं कि हर एक से पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में जो है वो क्या किया। वकालू, वो कहते हैं कौन, यहूदी, कौन कि तुम जो है वो यहूदी बन जाओ, औ नसारा, तो ईसाई क्या कहते हैं कि ईसाई बन जाओ, तो फिर क्या होगा, तहतदू, कि तुम्हें हदायत मिलेगी। अब यहां पर जो है इनका, इनके बारे में बताया जा रहा है, यहूदो नसारा के बारे में, कि उन्होंने जो है वो हदायत का ये मयार बना लिया कि यहूदी कहते हैं कि जो यहूदी होगा तो हदायत पाएगा, ईसाई कहते हैं कि जो ईसाई होगा तो वो हदायत पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, नहीं बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम अलैहि सलाम का तरीका इख्तियार करो। तो हदायत पाने का जो है वो अंदाज क्या होना चाहिए, कि इब्राहिम अलैहि सलाम का तरीका, मिल्लत यहाँ पे जो है वो तरीके के मानी में इस्तेमाल हुई है ये लफ्ज, और हनीफा जो है हा नून फा, ये बहुत अहम लफ्ज है और इसके मानी होते हैं हनफ के सबसे कटकर जो है वो एक तरफ होने वाला, यकसू होने वाला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खासियत क्या थी कि वो अल्लाह की तरफ झुके हुए थे, हर किस्म के मेलानात, जानिबदारियों से हट कर कट कर जो है वो अल्लाह को हो गए थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अल्लाह की खातिर, अपना माल, अपनी औलाद, अपना घर, अपने वालदैन, अपना मुल्क, अपनी तमाम चीजें। और बड़ी खूबसूरत बात है कि बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जरूरत इस बात की है, जैसे आज लोग परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे मसाइल का हल क्या होगा, हम कैसे जो है वो मसाइल से निकल सकते हैं, तो मसाइल से निकलने का एक ही तरीका है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाया जाए, उनकी तरह सच्चा और अच्छा मुसलमान बना जाए। तो मुस्लिम हनीफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे थे, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अब आप देखें कि यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि यहूदियत और ईसाइयत दोनों बहुत बाद की पैदावार हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना यहूदियत का नारा लगाया ना ईसाइयत का लगाया, तो उन्होंने किस बात का नारा लगाया था कि मैं जो हूं मैं तो मुस्लिम हनीफ हूं, उन्होंने कहा था असलम तो ले रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि ए मुसलमानों, तुम सब कहो, कुलू सब कहो, आमन्ना बिल्लाही, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्जिला इलैना, और उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल की गई है। और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल किया गया है इससे मुराद कुरान मजीद भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो सुन्नत है। तो उन्जिला इलैना से मुराद वही है मतलू और वही है गैर मतलू। मतलू उस वही को कहते हैं जो कुरान की शक्ल में हमारे सामने है, हम उसकी तिलावत करते हैं, और गैर मतलू वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और वो जो है हम उसकी तिलावत तो नहीं करते लेकिन आपका जो उसवा है उस पर हम अमल करते हैं। वमा उन्जिला इला इब्राहिमा, और जो कुछ नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल असबाती और औलाद याकूब। यहाँ पे असबात का लफ्ज जो है वो अहम है, इसका रूट है सीन बा तोए, और इसके जो है वो लुगवी मानी है बढ़ने के और फैलने के। जैसे कोई चीज होती है ना, बढ़ती और फैलती है, तो इसी तरह असबाब जो है बढ़ने और फैलने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक बाप की औलाद, इनकी मुख्तलिफ शाखों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और हजरत याकूब अलैहि सलाम की औलाद और उनकी जो मुख्तलिफ कबीले थे उसके लिए ये असबाक लफ्ज का इस्तेमाल इतना मारूफ है कि मुफस्सरीन कहते हैं ऐसे लगता है कि ये असबाक लफ्ज उन्हीं के कबीलों के लिए जो है ना वो बनाया गया, वजह किया गया। तो असबाक शब्द की जमा है और यही इसका रूप भी है। औलाद, औलाद की औलाद, पोते, नवासे और खास तौर पे फिर बनी इसराइल के जो कबाइल थे बनू इसहाक के, उनके लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। वैसे नवासे, नवासियां या यहूद के कबाइल जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि आप ये कहें कि इन पैगम्बरों पर और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ जो कुछ नाजिल हुआ हम उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो कुछ नाजिल किया गया मूसा अलैहिस्सलाम पर, जो कुछ दिया गया, ऊतिया दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा ऊतिया नबीयूना मिन रब्बिहिम, और जो कुछ दिया गया तमाम पैगम्बरों को। नबी वाहिद है, नबीयून जमा है, नून बा हमजा जो है ये बड़ी खबर को कहते हैं, और जो तमाम नबियों को दिया गया मिन रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, हम उस पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके क्या मानी है कि जो कुछ भी बाकी पैगम्बरों को मिला हम उस पर भी ईमान लाते हैं। तो ईमान के मानी ये है कि तमाम अंबिया को अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी मिला या नाजिल हुआ हम सब पर ईमान लाते हैं। किसी भी किताब या रसूल का इनकार नहीं करते, किसी एक किताब या नबी को मानना, किसी को ना मानना, अंबिया के दरमियान ये तफरीक करना है, इस्लाम इसको जायज नहीं कहता। लेकिन अमल सिर्फ कुरान मजीद के अहकाम पे करना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे करना है। तो बाकी अंबिया पर ईमान लाते हैं, बाकी किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन अमल जो है वो सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे करना है और कुरान मजीद पर करना है। तो पिछली किताबें लिखी हुई भी नहीं है, और अगर हैं भी तो अपनी असली हालत में नहीं है, तहरीफ हो चुकी हैं, और कुरान मजीद ने पहली किताबों को मनसूख कर दिया है। तो यहाँ पर जो है कि हम सब पर ईमान लाने से मुराद क्या है कि हम सबको मानते हैं, पैगम्बरों पर ईमान लाने से मुराद क्या है कि हम किसी में कोई तफरीक नहीं करते, सब पर ईमान लाते हैं। अमल जो है रसूल अल्लाह की जात सुन्नत पर और कुरान मजीद पर करना है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनमें से किसी के दरमियान जो है फर्क नहीं करते। ऐसे नहीं कहते कि फलां को मानते हैं फलां को नहीं मानते, बल्कि जितने भी पैगम्बर जो है आए हैं वो सब के सब जो है वो अल्लाह की तरफ से आए, सब एक ही सदाकत और एक ही हदायत की तरफ बुलाने वाले थे। तो बहसियत मजमुई जो है हम तमाम पैगम्बरों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और उनको मानते हैं। नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं, बिल्कुल हम इस्लाम जो है उसका ऐसे ही जो है वो इकरार करते हैं जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। वहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि असलम तो ले रब्बिल आलमीन, और हम भी क्या कहते हैं, नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। और मुस्लिम के माने क्या है कि आप अपने घर के अंदर हैं, आप मस्जिद में हैं, आप जो है वो डॉक्टर हैं तो आप क्लिनिक पे बैठी हैं, आप मॉल में हैं शॉपिंग कर रही हैं, आप किसी जहाज का सफर कर रहे हैं, आप कहीं जो है वो बिजनेस के लिए किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी अपनी जॉब के लिए जहां भी हैं, तो वहां पर जो है अल्लाह ताला ने लेने देने के जो तरीके बताए हैं कि झूठ से परहेज किया जाए, सच बोला जाए, नमाज के वक्त नमाज पढ़ी जाए, या फिर माँ के तौर पर जो एक किरदार बनता है, या बीवी के लिहाज से, या एक पड़ोसन के एतबार से, तो हर हाल में जो अल्लाह का कानून हो उसको जो है वो नाफिज करना, ये है मुस्लिम होना। तो इसको बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि हर वक्त हर जगह हर बात हर काम जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना, खा जवानी हो या बुढ़ापा, खा जो है वो शादी की महफिल है, कोई दूल्हा बला है या दुल्हन बनी हुई है, कोई भी मौका है, तो उस वक्त ये देखना है कि इस वक्त मेरे अल्लाह का मेरे लिए जो है वो क्या हुक्म है, मेरा अल्लाह किस बात से राजी होता है। हर हर मौके पे अपने आप से ये सवाल पूछना कि मैं क्या करूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अगर कोई गम का पहाड़ टूट पड़ा है तो मैं क्या करूं, میرے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ آپ سے باہر ہو جائیں، نمرود بن جائیں، فرعون بن جائیں، اس وقت بھی پوچھیں اپنے آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشی کے موقع پہ وہ کیا کرتے تھے، اب میں اس موقع پہ کیا کروں، اسی طرح پھر غم ہے تو میں کیا کروں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کے یہی معنی ہے کہ ہر لحاظ سے مکمل مسلمان بننا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے صحابہ، تم جس طرح ایمان لائے ہو، اگر یہ یہود و نصارہ یا یہ مشرکین جو ہیں یہ اسی طرح ایمان لے آئیں پھر تو صحیح بات ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر ہیں، انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ جو ہے منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو بے شک وہ جو ہے وہ شقاق ضد میں ہے، مخالفت میں ہے. شین قاف قاف، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھٹنا. تو دلوں کے اندر جب ضد ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ ضد پر ہیں اگر وہ انکار کر جائیں. فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ ہی حمایت کے لیے جو ہے وہ کافی ہے.